परवाज दी, मैंने खुद को तबला आवाज दी। मैं चल पड़ी अब कोई भी रोको ना, मेरी सोच को जब परवाज दी, मैंने खुद को तबला आवाज दी, अब रोको ना। मुझे हर किसी ये मंजूर नहीं, मंजिल भी अब दूर नहीं, खुद क्षमा मैं जलाऊंगी राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा, खुद क्षमा मैं जलाऊंगी राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा।
शांति, जैसे आज का टॉपिक है रूहानी सेवाधारी, तो हम यहाँ देखते हैं कि दुनिया में भी बहुत सारे जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते हैं तो अपने आप को जैसे वो भी सेवाधारी कहलाते हैं, पर उनके साथ में स्पिरिचुअल सेवाधारी नहीं, रूहानी सेवाधारी नहीं होते हैं वो। क्यों? क्योंकि उनका जो एक्टिविटीज़ होती है वो देह के तल पर होती है। रूहानी सेवाधारी माना ही जो रूहानी स्थिति में की गई सेवा रूहानी सेवा कहलाती है। तो उनमें जो लोग वो करते हैं, जैसे बाहर की दुनिया में लंगर लगाना, गरीबों की सेवा करना, कपड़े बांटना, भिखारियों को दान देना, आजकल तो ये भी ट्रेंड चल गया कि शादियां कराना, ये भी सेवाधारी में माना जाता है। तो लेकिन बाबा बोलते हैं कि रूहानी सेवाधारी अर्थात क्या, जो रूहानी स्थिति में है, जो रूह द्वारा सेवा की जा रही है वह रूहानी सेवा है। जैसे आज बाबा मुरली में बताया कि लंदन निवासियों से मिल रहे हैं, उस समय बाबा ने कहा कि पहला पॉइंट है उसमें कहा कि दिल व जान सिख व प्रेम से जो सेवा की जाती है वह है रूहानी सेवा। तो जैसे बाप भी रूहानी सेवाधारी बनकर आया है और आप बच्चे भी रूहानी सेवाधारी हो, जो बाप का टाइटल है वो बच्चों का टाइटल है। बाबा भी परम धाम से आया है हम बच्चों की सेवा करने के लिए, खिदमत करने के लिए। तो कुछ पॉइंट निकालेंगे पहले कि बाबा ने हमें रूहानी सेवाधारी के लिए कौन कौन से टाइटल दिए हैं, जैसे खुदाई खिदमतगार और रूहानी सेवाधारी, सोशल वर्कर, नर्स, स्पिरिचुअल सर्वर। हाँ, तो उसमें जैसे बाबा बोलते हैं स्पिरिचुअल इनकॉग्निटो वॉरियर्स, तो यानी हमारा जो भी चीज है, जो भी एक्टिविटी है वो रूहानी शब्द से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब हमें आत्मा का ज्ञान मिल जाता है तो उसके बाद हमारी कोई भी जो एक्टिविटी है स्थूल कार्य करते हुए भी वो रूहानी में बदल जाती है। तो जब भी हम कोई ऐसा भी स्थूल कार्य भी करते हैं, जैसे अभी भाई जी ने सुनाया कि कोई भी एक्टिविटी, चाहे भोजन खा रहे हैं चाहे भोजन बना रहे हैं, उसमें अगर हम याद में हैं तो वह रूहानी याद हो जाती है, रूहानी सेवा हो जाती है, और जो वह कर रहा है वो रूहानी सेवाधारी बन जाता है। तो उसमें फिर नेक्स्ट पॉइंट जैसे बाबा ने बताया था कि लंदन निवासियों से बात करते हुए आज कौन बैठे हैं सामने, तो लंदन निवासी वैसे तो बाबा के सभी बच्चे हैं और सभी अनन्य हैं, तो उसमें भी विशेष बाबा ने जो चांस दिया जो लंदन निवासियों को, तो उसमें बाबा ने उनको आगे रखते हुए कहा कि जैसे जो लंदन का जो सेवा केंद्र है वो मेन फाउंडेशन है विदेश की सेवा का, तो विदेश की जहाँ जो फाउंडेशन अगर बाबा ने कहा अगर कमज़ोर होता है तो जो जैसे बोलते हैं ना रचना रचयिता कमज़ोर है तो रचना भी कमज़ोर हो जाती है। तो जैसे हम देखते हैं ना कभी कभी बारिश के समय कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जहाँ से पानी बहता है, तो उन पेड़ों की जो जड़ें हैं कमज़ोर हो जाती हैं, तो वो क्या करते हैं एक दूसरे के साथ, दूसरे पेड़ के साथ लगे रहेंगे, तो जब तक वो उसके साथ दूसरे पेड़ का सहारा लेकर खड़े हैं तब तक वो अपने आप खड़े रहते हैं, नहीं, अगर उसका सहारा नहीं है तो जैसे एक तरह से गिर जाते हैं। यहाँ भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ब्राह्मणों में भी और बाहर की दुनिया में भी एक दूसरे के सहारे पे खड़े हैं। हम जब ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो जाने अनजाने हमारे कुछ ऐसे फॉलोअर क्रिएट हो जाते हैं जिनका हमें भी मालूम नहीं पड़ता, वो हमें जाने अनजाने में फॉलो करते रहते हैं। अगर हमारी किसी ना किसी बात में कमजोरी है तो वो देखते हैं ये लोग भी इस बात में कमज़ोर है तो हम हैं इस बात में कमज़ोर तो क्या हुआ। तो हमें, जैसे भाव ने कहा कि आपके ऊपर पूरे विश्व की जिम्मेवारी है, जब हम उस जिम्मेवारी को समझ के चलते हैं तो अपने अंदर कोई भी कमजोरी का संस्कार नहीं आ सकता। जब हमारे सामने वो जिम्मेवारी, वो लक्ष्य क्लियर रहता है कि हम दूसरी आत्माओं को आगे बढ़ाने के, सहारा देने के निमित्त बने हुए हैं, ठीक है ना। आज भी हम देखते हैं कभी कभी कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं तो उन आत्माओं को देखकर ही लोग आगे बढ़ते हैं, भले ही उनके अंदर ज्ञान की इतनी ज़्यादा समझ नहीं है या ज्ञान की प्रकाष्ठा नहीं है, लेकिन देखते हैं कि वो लोग ज्ञान में चल रहे हैं तो हम भी चल सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, गिरते को सहारे का, थोड़ा सा भी सहारा मिल जाए तो वो भी काफ़ी होता है, डूबते को तिनके का सहारा। तो वो आत्माएँ ऐसी होती है कि जिनको हल्का सा सहारा मिल जाए तो वो, जैसे एक इस भवसागर से कहो या फिर इस ज्ञान मार्ग में अच्छे तरीके से चल सकते हैं। और शुरुआत मेरी भी ऐसी ही हुई थी कि ज्ञान, बचपन में जैसे ज्ञान में आया तो इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन किसी को देखकर, एक हमारे लौकिक में ही एक भाई है जो ज्ञान में चलते थे, तो उनको देख देख के ही हम आगे बढ़ते रहे। तो अभी तो जैसे धीरे धीरे ज्ञान में परिपक्वता आती जाती है तो हम फिर दूसरों को सहारा देने के निमित्त बन जाते हैं, लेकिन जब हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे दूसरों को अंदर ऐसे नेगेटिव संकल्प चले या दूसरे गिरने के निमित्त बन जाते, वो भी एक तरह से जैसे डिसर्विस का कारण बन जाती है। तो हमें अपने आप को बहुत संभाल के चलना है कि कौन कौन सी जो सेवा कर रहा हूँ मैं, वो रूहानी सेवा में आ रही है, आत्माओं के उत्थान के लिए आ रही है या नीचे गिराने का निमित्त बन रही है। तो बाबा ने जैसे बताया कि कभी कभी क्या होता है कि हम जो अपने समय को व्यतीत करते हैं तो साधारण रीति से व्यतीत करते हैं, जैसे अभी भाई जी ने बताया, तो उसमें हमारे साधारण एक्टिविटी भी लोगों के मन में संकल्प पैदा कर देती है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ जैसे हर घंटे जैसे ट्रैफिक कंट्रोल होता है, तो ट्रैफिक कंट्रोल के समय देखते हैं कि जैसे पार्टी वाले आए होते हैं तो खास मधुबन में आते हैं तो विशेष अटेंशन रखते हैं कि हमें ये ट्रैफिक कंट्रोल करना है क्योंकि ये मधुबन में नियम बना हुआ है। उसी में ही अगर कोई अपना भाई, पुराना भाई, बीके भाई, तो वो देखते हैं समर्पित भाई, तो वो ट्रैफिक कंट्रोल के समय कुछ ना कुछ बात कर रहा है या ऐसे ही स्पेंड कर रहा है उस समय को, तो उनके अंदर भी वो वीकनेस आ जाती है कि मधुबन वाले भी ऐसे करते हैं। तो यानी जब फाउंडेशन कमज़ोर हो जाता है तो जैसे देखने वाले, उसके जो भी देख रहे हैं उसको, तो उनके अंदर भी एक कमज़ोरी का बीज पैदा हो जाता है। और एक कमज़ोरी बोलते हैं ना, जैसे एक द्वार खोल दिया, वेंटिलेशन खोल दिया माया के लिए, तो वेंटिलेशन कब दरवाज़ा खुल जाता है तो पता ही नहीं लगता। तो हमारी भी अगर छोटी सी भी किसी बात में कमज़ोरी है तो उस कमज़ोरी को, जैसे बाबा ने कहा, आज लीकेज है, कोई भी लीकेज है, उस लीकेज को तुरंत बंद कर देना है, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। कब हम उस स्थिति से, ऊपर की स्थिति से नीचे आ जाते हैं हमें भी नहीं पता लगता। तो ऐसे समय में हमें बहुत संभाल के अपने आप के ऊपर अटेंशन देते हुए चलते रहना पड़ेगा। तो अपने समय का भी उस समय सदुपयोग करना है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे ब्राह्मणों में जो बीच बीच में सेवाओं के दौरान भी और सेवा के बाद भी बहुत सारा समय ऐसा फ्री टाइम होता है जिसमें वो उस समय को वेस्ट चला देते हैं, तो वो जो वेस्ट समय होता है तो हमारे लिए एक लीकेज का कारण बन जाता है। वो उस समय हम रूहानी सेवा नहीं कर रहे हैं। अगर वही समय हमारा सफल किया जाए तो वो समय हमारे पुरुषार्थ के लिए एक आधार बन जाता है आगे बढ़ाने का। जैसे कई बार हम चर्चा करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे पास समय वही है, सबके पास वही समय है। जैसे बड़े थे, हमारी दादियाँ थी, सबके पास वही समय था, हमारे पास भी वही समय। ऐसा नहीं है कि समय 24 घंटे से बदलकर 48 हो जाए या 28 घंटों का हो जाए, समय वही है। लेकिन उस समय को सफल कैसे किया जा रहा है यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर समय को सफल नहीं करते, समय तो जा ही रहा है, वो वेस्ट के खाते में चला जाएगा। हमें समय को चुराने वाला भी बनना चाहिए कि कैसे हम समय को चुरा सकें। तो हमें अपनी ऐसी एक्टिविटी पर पूरा ध्यान देना, पूरा फोकस देना है। और इसके बीच में हम तीन चार बातें देखेंगे कि रूहानी सेवा कैसे कैसे की जा सकती है। तो पहला जैसे पॉइंट है ज्ञान के द्वारा, ज्ञान दूसरों को ज्ञान देना, ज्ञान बांटना, ये भी रूहानी सेवा में आ जाता है। और उन आत्माओं की ज्ञान के द्वारा पालना करना, ये रूहानी सेवा में आ जाता है। और कभी कभी जैसे हम देखते हैं कि रूहानी ये ज्ञान देते देते समय भी हम कुछ आत्माओं से अटैच हो जाते हैं। ज्ञान देना अच्छी बात है, लेकिन डिटैच होकर हम आत्मिक स्थिति में ज्ञान देते हैं तो उन आत्माओं के लिए एक सुकून का काम करता है। क्योंकि बाहर की जो भी आत्माएं हैं तड़प रही हैं, भगवान को ढूंढ रही हैं, मिल नहीं रहा भगवान, तो उन आत्माओं को अगर ज्ञान की थोड़ी सी भी बूंद मिल जाती है तो वो उस आत्मा के लिए एक अमृत का काम कर देती है। तो उस ज्ञान को देते समय हमें खास अटेंशन देना चाहिए कि हम किस भाव से ज्ञान को दे रहे हैं, आत्मिक भाव से या किसी और भाव से। हमारे अंदर कौन कौन सी वृत्तियां चल रही हैं। अगर हमारे मन के अंदर ज्ञान देते समय रहम की वृत्ति है, स्नेह की वृत्ति है, तो उस आत्माओं को जो ज्ञान है वह दिल तक जाएगा, तो उस ज्ञान को वह स्वीकार करेंगे। और वहीं अगर हमारे अंदर उस ज्ञान के प्रति या उस आत्मा के प्रति थोड़ा स्वार्थ भाव है कि मुझे इन आत्माओं से कुछ प्राप्ति चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, तो वो जो स्वार्थ भाव है उस ज्ञान देने वाले, जो हम ज्ञान दिया जा रहा है उसमें मिक्सअप हो जाता है। जब मिक्सअप हो जाता है तो उसकी, जैसे बोलते हैं ना बाबा, कोई भी चीज़ दूध को अगर मिक्स कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसी प्रकार ज्ञान को दिया तो जा रहा है लेकिन ज्ञान के अंदर कौन कौन सी हमारे अंदर जो भाव चल रहे हैं, जो भावनाएं पैदा हो रही हैं, तो वो क्या चीज़ है। अगर हम उसमें रूहानी स्थिति में नहीं है, आत्मिक भाव में नहीं है, तो वह ज्ञान जैसे एक तरह से मिक्सअप किया जा रहा है। तो जैसे मिक्स बोलते हैं ना, मिक्स की तो वैल्यू ऑटोमेटिक कम ही हो जाती है। दिमाग से दिया गया ज्ञान, बाबा बोलते हैं ना, दिमाग से दिया गया ज्ञान दिमाग तक ही रह जाता है और दिल से दिया गया ज्ञान दिल तक पहुंचता है। हाँ, दिमाग खराब कर देते जो दिमाग से ज्ञान देते हैं। तो उसमें हमें खास अटेंशन देना पड़ेगा कि ज्ञान किस भाव से और किस रीति से दिया जा रहा है, हमारी वृत्तियाँ कैसी है उस समय। रहम का भाव है, स्नेह का भाव है, या आगे बढ़ाने की भावना है। जब वो आत्मा उस ज्ञान को एक्सेप्ट कर लेती है, ज्ञान में चलना शुरू कर देती है, तो उन आत्माओं के मन से हमारे प्रति कितनी दुआएं निकलती हैं। तो दुआएं लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, मुश्किल भी नहीं है और सहज भी नहीं है वैसे देखा जाए तो, ब्राह्मण परिवार में भी, क्योंकि हमारी छोटी सी भी कोई ऐसी एक्टिविटी वो ज्ञान को ओपोजिट कर देती है, ज्ञान के विरुद्ध कर देती है। और ज्ञान कहाँ देना और कैसे देना, इस चीज़ की भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। कभी कभी जैसे हम किसी के पास जाते हैं, बेचारा दुखी है, या कभी कभी ऐसा भी होता है किसी ने शरीर छोड़ा, तो वहाँ जाके ज्ञान सुनाना शुरू कर देंगे, ये तो ड्रामा में था, ये तो हो नहीं था, तो वो जैसे डिससर्विस हो जाती है। कहाँ और कौन सी बात को सुनाना चाहिए, वो चीज़ें भी जरूरी हैं। और कभी कभी ऐसा होता है एक दिन में ही या एक घंटे में ही 7 डे का कोर्स करा देते हैं, पूरा का पूरा उडेल देते हैं, हम खाली हो जाते हैं, A to Z पूरा उनको एक दिन में 7 डे कोर्स करा देते हैं। और उसके बाद फिर बेचारा इतना हैवी हो जाते हैं, सोचते हैं कि करूं या नहीं करूं, सोच में पड़ जाते हैं। शुरुआत होती है आत्मा के ज्ञान से और लास्ट तक ब्रह्मचर्य। उसको ये भी कह दिया जाता है कि यहाँ हम पवित्र रहते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, शादी नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें सुना देते हैं। सुबह तीन बजे उठते हैं, बाहर का निकालते, तो उन लोगों को बोलता है, भाई इससे तो हाथ जोड़ा बहुत अच्छा है, हम लोग ज्ञान नहीं सुने तो ही अच्छा है। तो ये चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेंगी कि ज्ञान दिया कैसे जा रहा है और किस व्यक्ति को दिया जा रहा है। और आत्मा में उस आत्मा के अंदर इतना बल नहीं है कि उस ज्ञान को समा सके, सुन सके। हम भरते जा रहे तो क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा ना। तो ओवरफ्लो होने के बाद क्या होगा, ब्लास्ट भी हो जाता है कभी कभी। तो ये चीज़ें हमें खास ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और ज्ञान ऐसा दिया जाए ताकि आत्मा के अंदर एक इंजेक्शन का काम करे, उसको ताकत बल का काम करे। ऐसे नहीं कि वो आत्माएं निराश हो जाएं। ज्ञान देना तो मुश्किल बात नहीं है, ज्ञान सभी दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान कैसे दिया जा रहा है इस चीज़ का बहुत महत्व है। हम किसी को ज्ञान इस रीति से दे रहे हैं भी उस आत्मा को सुख मिले, सुकून मिले, या उस आत्मा के अंदर उस ज्ञान के प्रति हमारे प्रति दुआएं निकले, या इस भाव से दिया जा रहा है कि वो जैसे टोंट के तरीके में। आजकल देखा गया ज्ञानी सभी हैं, अगर हम उनको कोई बात बोलते तो वो हमें 10 बातें सुना देते हैं। तो ऐसा ज्ञान भी ना हो कि किसी को टोंट मारना या किसी को नीचे दिखाने के लिए ऐसे ज्ञान के पॉइंट बोले जाएं। जैसे पहले ज्ञान में जब शुरू शुरू में हम आए तो हम एक दूसरे को जैसे बोलते थे कि शिव बाबा याद है, और यहाँ भी ये चीज़ थी कि मधुबन में भी कि एक दूसरे को बोला जाता था कि शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है। तो अभी अगर ऐसा समय नहीं है, अगर हम अभी किसी को बोलते हैं शिव बाबा याद है तो उल्टा हमारे ऊपर आ जाती है वो बात, क्यों आपको बहुत याद रहता है। तो वो भी फिर मौका ढूंढते रहते हैं कि हम कब याद में नहीं है। तो ऐसा ज्ञान भी ना हो अपने पर भारी पड़ जाए। हाँ, तो देने का तरीका और विधि बहुत ये समझना जरूरी है हमारे लिए। तो ये एक सेवा भी है, ज्ञान सुनाना सेवा भी है, और अगर सही तरीके से नहीं सुनाया जाए तो ये डिसर्विस का कारण भी बन जाएगी। तो उसी प्रकार योग द्वारा रूहानी सेवा कैसे कर सकते हैं हम। पहला पॉइंट जैसे सकाश देना, उसमें आ जाता है आत्माओं को, दुखी आत्माओं को जो निराश हो चुके हैं उन आत्माओं को, और प्रकृति के जो पांचों तत्व हैं उनको सकाश देना। इससे क्या होता है, हमारी बहुत सारी दुआएं जमा होती हैं, हमारे अंदर बल जमा होता है, योग का बल, जिसको बाबा बोलते हैं कि योग का बल जो है आपको ऐसे समय में काम आता है जहाँ पर, जैसे बोलते हैं ना, दवा काम नहीं आती और दुआएं ज़्यादा काम आती हैं। और ये सूक्ष्म दुआएं जो हम कमा रहे हैं, ये कोई हमारे जमा ऐसे नहीं दिखाई देती कि किसी को दिया और हमें वो आके हमारे पास आके बोले कि आपने हमारे लिए ये किया तो बहुत अच्छा किया, नहीं। सूक्ष्म रीति से जब हम निस्वार्थ भाव से वो दुआएं देते हैं, योग का सकाश देते हैं, तो वो ऑटोमेटिक हमारा जमा होना शुरू हो जाता है। कभी कभी कुछ अच्छे लोग बोलते हैं कि भाई जी हमारे लिए योगदान देना। हमारा योग कोई ऐसा नहीं है पर्सनल किसी एक व्यक्ति के लिए, हमारा इंटरनेशनल योग है, सर्व के लिए योग है, सर्व आत्माओं के लिए योग है। और सर्व में प्रकृति भी आ जाती है और मनुष्य आत्माएं भी आ जाती हैं। जब इस विधि से हम योग दान करते हैं तो उसका पुण्य कई गुणा जमा हो जाता है। वो योग हमारे पुरुषार्थ को एक लिफ्ट, पुरुषार्थ के लिए एक लिफ्ट का काम करता है। और जब किसी बात के लिए हमें पुरुषार्थ में लिफ्ट मिल जाती तो पुरुषार्थ बहुत आगे बढ़ जाता है। कभी ऐसा होता है कि हमें पता लगता है कि जैसे कभी कभी होता है ना कि हम कोई समाचार सुन लेते हैं, वहाँ किसी फलाने व्यक्ति, बहुत सारे लोगों ने शरीर छोड़ दिया। इस चीज़ को सिर्फ वार्तालाप का विषय ना बनाया जाए कि हम इस एक दूसरे को बताते रहें कि वहाँ फलानी जगह इतने इस चीज़ के कारण इतने लोगों ने शरीर छोड़ दिया, ये चीज़ें, ये घटना हो गई, प्राकृतिक आपदा आ गई है, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया। लेकिन हमारा कार्य ये होना चाहिए कि वहाँ पर हम बैठकर सकाश देना शुरू कर दें। आत्माओं के साथ हो रहा है तो उस जगह को इमर्ज करके वहाँ सकाश देना शुरू कर दिया जाए, ना कि हम उन बातों को कर करके एक दूसरे से के साथ चर्चा करके वायुमंडल को हल्का कर दें या नेगेटिव कर दें, क्योंकि ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हमारा सुनना वैसा सुनना नहीं है जैसे कभी बाबा बताते थे ना कि बच्चे तुम बच्चों की तो नींद फिट जानी चाहिए, इतनी अशांत आत्माएं, दुखी आत्माएं हैं, उन आत्माओं को सकाश देने से ही आपको फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है ना। हमें देखते कि हमें फुर्सत कैसे मिल जाती है, व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के चिंतन में, इधर उधर की वार्तालाप में। तो वो चिंतन हमारा, वो योग का समय हमारा दूसरी आत्माओं को देने के लिए होना चाहिए। और बोलते भी हैं कि जो जितना देता है उतना मिलना शुरू हो जाता है। तो हमें योग के द्वारा हम क्या कर और क्या क्या दान कर सकते हैं, जैसे योग द्वारा शक्तियों का दान भी दे सकते हैं। हाँ, शक्तियों में जैसे शांति का दान, खुशी का दान, खुशी शक्ति है खुशी का दान भी दे सकते हैं। तो उन चीज़ों से जैसे शक्तियों का दान देना शुरू कर दें। और बाबा ने हमें बहुत सारे खजाने दिए हैं, जैसे ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, इस प्रकार से बहुत सारे खजाने दिए। उन खजानों को अगर हम सफल करना शुरू कर देते हैं तो वो बढ़ना भी शुरू हो जाते हैं। जैसे आज बोलते हैं, आज की मुरली में बाबा ने कहा कि ज्ञान तो बहुत है लेकिन स्नेह की कमी है। और दूसरा, अगर ज्ञान है लेकिन ज्ञान को हमने यूज़ कितना किया है, शक्तियां हैं, शक्तियों को यूज़ कितना किया है, धन पड़ा है हमारे पास, हम धन को देख देख के खुश हो रहे हैं, हमारे पास बहुत सारा धन पड़ा है। वो पड़ा हुआ धन नहीं बढ़ेगा, जब हम उस धन को इन्वेस्ट करेंगे, किसी अच्छे कार्य में लगाएंगे, तभी वो धन बढ़ेगा ना। तो उसी धन को, जैसे ज्ञान भी हमारा धन है, शक्तियाँ भी हमारा धन है और खजाने भी हमारा धन है, उस धन को अगर हम यूज़ कर रहे हैं किसी कार्य में तो वो जैसे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसमें हमें, जैसे कभी कभी कुछ ब्राह्मण आत्माएं भी बोलते हैं, बाबा हमें थोड़ी सी शक्ति दे दो, थोड़ा सा ये दे दो, थोड़ा सा ये दे दो। तो बाबा ने कहा, आप सब बच्चों को बाप ने सब कुछ दिया हुआ है, बच्चे आपको कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बोला जाता है, किसी चीज़ की अगर हमारे अंदर कमी ना, उस चीज़ को बांटना शुरू कर दो। मान लो ज्ञान की कमी है, ज्ञान बांटना शुरू कर दो, ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाए। शक्तियों की कमी है, शक्तियाँ बांटना शुरू कर दो। शांति की कमी है, शांति बांटना शुरू कर दो। पवित्रता की कमी है, पवित्रता बांटना शुरू कर दो। जितना बांट रहे हैं, क्यों नहीं है? जन्मते ही बाबा ने जन्मते ही बोल दिया ना, आपके पास क्या नहीं है। हम ये रियलाइजेशन ही हमारे पास है। और कोई भी ब्राह्मण आत्मा ऐसी नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है, सब कुछ है। कम है तो बांटना है, धन कम है तो उसी धन को इन्वेस्ट कर दो, ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बस हम यूज़ नहीं कर रहे उस चीज़ को। यूज़ करना शुरू कर देंगे तो बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। तो और उसके बाद फिर बावन जैसे है, पहले ज्ञान हो गया, योग हो गया, और धारणाओं द्वारा भी सेवा हम कैसे कर सकते हैं, कोई पॉइंट बताए। जैसे जो चीज़ें याद में भोजन करना, जैसे इस मुरली में जैसे बाबा ने बताया कि याद में भोजन बनाना, उसमें क्या होता है, उस भोजन में रूहानी शक्ति भर जाती है। जब वो रूहानी शक्ति भर जाती है तो अन्य आत्माओं को भी एक बल का काम करता है। जो खाने वाली आत्माएं उनको भी वो शक्ति का, उनके लिए भी शक्ति का काम करता है। जैसे भंडारे में लिखा हुआ है ना, यह भोजन दुख भंजन है, ब्रह्मा भोजन है। हो सकता है कोई आत्मा बेचारी दुखी हो, लेकिन ब्राह्मणों में भी या बाहर की आत्माओं में भी, यहाँ ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, कि बहुत सारी आत्माएं, किसी कोई भी परिस्थिति आ जाती है जीवन में चलते चलते, हो सकता है किसी के साथ थोड़ा बहुत मन मुटाव रहा हो, तो उस भोजन को अगर वही भोजन हमने बिना याद के या किसी के साथ ईर्ष्या भाव में या क्रोध में बनाया। आजकल जैसे घरों में माताएं क्या करती हैं, टीवी देखते हुए, सीरियल देखते हुए भोजन बनाती है। और जैसे वो खाने वाली आत्माएं, वो भी क्या एक्टर ही पैदा हो जाते हैं, हीरो हीरोइन पैदा हो जाते हैं। तो वो भोजन भी अगर हम याद में बनाया जाए तो वही हमारे लिए एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी का काम कर देता है, रूहानी शक्ति का काम कर देता है, बल भरने का काम कर देता है। तो ऐसा भोजन जिसमें, ऐसा नहीं है कि भोजन में सिर्फ लहसुन प्याज या ऐसी तामसिक चीज़ें नहीं है, वही तमो प्रधान भोजन है। गलत चीज़ें सोचते हुए, गलत चीज़ें करते हुए अगर भोजन बनाया जा रहा है, और वो भी तामसिक भोजन में ही आ जाता है, पेट भरने का भी और बीमारी लगाने का भी काम कर देता है। क्योंकि जब याद में भोजन किया जा रहा है ना, तो उस समय हम इस कॉन्शियस में होते हैं कि हमें कितना भोजन लेना है, कितना भोजन खाना है। नहीं तो अगर याद में नहीं है, हवड़ 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 सीधा खाते जाएंगे, और वो सिर्फ पेट तो भरेगा ही, वो भरेगा नहीं भरेगा, लेकिन क्या होगा, वो बीमारी का कारण बन जाएगा। आलस्य पैदा करेगा, बहुत सारी विकृतियां पैदा करेगा शरीर में, बीमारी पैदा करेगा। हमें ये सोच के भोजन करना है कि मैं किस कॉन्शियस में भोजन कर रहा हूँ, याद में भोजन कर रहा हूँ। और उससे क्या, जब हम याद में भोजन करते हैं तो हम जो आसपास के लोग हैं उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। वो देखते हैं कि ये आत्मा याद में भोजन कर रही है। हर एक ब्राह्मण आत्मा ना कुछ ना जो भी एक्टिविटी कर रही है, अगर याद में कर रही है ना, ऑटोमेटिक उनके द्वारा, दूसरों के द्वारा हमें दुआएं मिलनी शुरू हो जाती हैं ना। देखो ये याद में भोजन कर रहा है, बाबा की याद में है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना। तो वो जो भोजन किया जा रहा है, सिर्फ एक देखा जाए सिर्फ एक स्थूल भोजन है, लेकिन वो भोजन एक तो शक्ति का कार्य भी कर रहा है, आत्मा में बल भी भर रहा है, और दूसरा दूसरी आत्माओं की भी सेवा हो रही है उसमें। क्योंकि यहाँ हम इस संगठन में रहते तो कोई एक दूसरे को देख रहा ही है, ऐसा नहीं है कि कोई किसी को नहीं देख रहा, हर एक किसी ना किसी को नोटिस कर रहा है। अगर हम अच्छी कोई बात कर रहे हैं तो भी नोटिस की जा रही है, अगर हमारे अंदर कोई गलत बात हो रही है वो भी नोटिस की जा रही है। अगर हम गलत किसी के ऊपर इम्प्रेशन डालते हैं, गलत प्रभाव डालते हैं, तो उससे उन आत्माओं के संकल्प चलाने के भी तो निमित्त बन जाते हैं। तो ये यानी हर एक जो भी चीज़ है, भोजन करते हुए, भोजन बनाते हुए, या स्थूल कार्य कोई भी करते हुए, तो और जैसे जैसे मधुबन में हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न धर्मों से, भिन्न भिन्न भाषा से, भिन्न भिन्न स्टेट से बहुत सारे ब्राह्मण यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हर एक के विचारधारा अलग है, हर एक के विचार अलग अलग है, हर एक अलग तरीके से सोचता है, हर एक अलग रहन सहन से आया हुआ है। तो सेवा के दौरान क्या होता है, कहीं ना कहीं मन मुटाव होने के कारण या विचार ना मिलने के कारण एक टकराव का कारण बन जाता है। तो उस समय अगर हम अपने आप को शांत स्थिति में या रूहानी स्थिति में टिका के रखते हैं तो वह हमारे लिए एक योग का समय भी बन जाता है और उस वातावरण को नेगेटिव बनाने से बचा देता है। इसमें क्या होता है कि एक आत्मा ने जैसे हम किसी के ऊपर क्रोध किया और दूसरा व्यक्ति शांत रहा, तो उसके शांत रहने से सबसे पहले क्या होगा, एक तो जो व्यर्थ संकल्पों की क्यू लगी है वो फुल स्टॉप हो जाएगी। दूसरा, जब वो आत्मा अपनी कॉन्शियस में आएगी तो उसको लगेगा, रियलाइज होगा कि जो कहा गया मैंने गलत कहा, तो उस आत्मा के द्वारा भी कहीं ना कहीं से हम दुआएं लेने के पात्र बन जाएंगे। ऐसे समय में अगर हमारी स्थिति शांत है, अगर हम अच्छी स्थिति में हैं, और वही अगर उसने कुछ एक शब्द कहा और हमने 10 शब्द सुना दिए, तो वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले उस आत्मा के साथ टकराव हो गए, और जो आत्माएं हमें देख रही हैं उनके मन में भी नेगेटिव संकल्प पैदा होने शुरू हो गए, और तीसरा हमने क्या किया, वातावरण को नेगेटिव बना दिया। यहाँ हम रह रहे हैं, बाबा ने जो हमें सेवाएं दी हुई हैं, सेवाओं के साथ साथ हमें यहाँ का वातावरण बनाने के निमित्त बनाया है। मधुबन में हर एक बच्चा, चाहे मधुबन में चाहे सेंटर में, कोई भी ऐसी नेगेटिव बात आ रही है, अगर हम उसको फुल स्टॉप वहीं पर लगा देते हैं, तो इससे हमने क्या किया, उस वातावरण में नेगेटिविटी को फैलाने में जो सहयोग नहीं दिया, तो उससे क्या होगा, वातावरण श्रेष्ठ बना रहेगा। अगर उसी में हमने, उसने एक कहा, हमने दूसरा सुनाया और तीसरे ने जाके वर्णन कर दिया उसका, तो क्या हो गया, वो वातावरण नेगेटिव हो गया। तो वो नेगेटिव वातावरण, मान लो किसी नेगेटिव आत्मा को टच हो गया या उसके संकल्पों में आ गई वो बात, तो क्या होगा, और ही बेचारी डाउन हो जाएगी, वो पहले से डाउन है। तो हमें ऐसे कार्य भी नहीं करने जिससे हम वातावरण को नेगेटिव बना सकें। जैसे बोला जाता है ना कि हम यहाँ रह रहे हैं, ठीक है ना, स्थूल सेवाएं कर रहे हैं, स्थूल सेवाएं तो देखा जाए तो लौकिक जो लेबर है वो भी करती रहती है, उनमें और हमारे में कोई ऐसा अंतर नहीं हो जाएगा अगर हम बस उसी रीति सेवा कर रहे हैं। लेकिन सेवा करते हुए भी हमारे अंदर कौन से भावनाएं, कौन से भाव पैदा हो रहे हैं, ये मायने रखता है। सेवा के पीछे हमारा लक्ष्य क्या है, सेवाओं के लिए हमारी वृत्ति क्या है, वो वृत्ति यहाँ पर एक वायुमंडल का काम करती है जिससे दूसरी आत्माओं को सहयोग मिलता है, आगे बढ़ने का उमंग मिलता है। जब हम कोई सेवा, स्थूल सेवा भी शुरू करते हैं, अगर हम याद में कर रहे हैं ना, तो जैसे उदाहरण सुनाते, साकार बाबा के समय कोई बच्चा नहीं आता तो खुद बाबा उस कार्य में जुट जाते थे, लग जाते थे, उनको देख के फिर दूसरे बच्चे भी आ जाते थे। और वही सेवा अगर हम दिखावे की रीति से कर रहे हैं तो कोई नहीं आएगा, तो कहेंगे करने दो इसको जो कर रहे हैं। तो उसके पीछे हमारा भाव क्या है? दिखावा नहीं करना यहाँ पर। दिखावा तो दुनिया में वाले बहुत करते हैं, और दिखावे वाले देखने तो वो फिल्मी एक्ट्रेस बहुत है, वो बहुत दिखावे करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर रूहानी एक्टर हैं, वो वाला दिखावा नहीं कर रहे। हम सिंपल रीति से भी रह रहे हैं, सिंपल सेवा भी कर रहे हैं, तो उसमें भी सेवा समाई हुई है। जैसे बाबा बोलते हैं ना, साधारण से साधारण सेवा भी हम अगर हम करते हैं, जैसे झाड़ू लगाने की भी सेवा। बाबा कभी कभी उदाहरण देते हैं ना कि बाबा जैसे रोड बनाने का काम करते, तो बच्चे उनको बाबा को मना बोलते थे, बाबा आप ये सेवा नहीं करो। तो बाबा बोलते, बच्चे कोई भी बच्चा आएगा ना तो मैं ऐसी दृष्टि दूंगा कि उड़ जाएगा वो। हमें वो हम वो चीज़ तो नहीं कर सकते कि उड़ जाएगा वो, लेकिन कम से कम ये चीज़ तो कर सकते हैं कि उस आत्मा को हमारे जो सेवा कर रहे हैं वो देख के उमंग आए कुछ, उस आत्मा को हमारे से देख कर कुछ ऐसी रूहानियत की खुशबू आए, जिससे वो भी उस सेवा के प्रति या यज्ञ के प्रति उनके मन में भी अच्छे विचार पैदा हों। नहीं तो बहुत सारी ऐसी है कि सेवाएं करते जिनके पीछे कभी कभी हमारे स्वार्थ भावना पैदा हो जाती है, तो वो सेवाएं भी एक डिससर्विस का कारण बन जाती है। हमें सेवाएं करनी है, सेवा करते करते हुए हमारे अंदर जो भावनाएं हैं वह बहुत कार्य करती है। तो ये हमें बहुत सोच समझ के करना है कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ये मायने नहीं रखता हम क्या कर रहे हैं, और लेकिन ये मायने रखता है हम कैसे कर रहे हैं। बाबा ने ये ब्राह्मण जीवन दिया ही सेवा के लिए। हमारा ऐसा कोई भी पल नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी क्षण नहीं होना चाहिए जिसमें सेवा नहीं हो सकती। हम हैं ही रूहानी सेवाधारी, जीवन ही हमारी रूहानी सेवा के लिए। आत्मा का ज्ञान मिल गया तो रूहानी सेवाधारी हम हो ही गए। स्थूल कार्य करना कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक कर सकता है। जीवन में हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम इस सेवा द्वारा, चाहे कोई भी सेवा है, इस सेवा द्वारा हम दूसरों को आगे बढ़ाने के निमित्त बने, या दूसरी आत्माओं में बल प्रदान करने के निमित्त बने, या दूसरों को उमंग देने के निमित्त बने। हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए, ना कि सिर्फ खाना पूर्ति के लिए सेवा की, सेवा समाप्त हुई और भाग लिए, ऐसा भी नहीं। सेवा हमें एक पुरुषार्थ का कारण बन जाए जो सेवा दी जा रही है हमारे। नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है कि सेवा को हम कभी कभी क्या सोचते हैं कि ड्यूटी मिली हुई है, वो ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी बाहर की दुनिया में करते हैं, यहाँ हम सेवा कर रहे हैं। और ड्यूटी बजाने वाले सिर्फ, जैसे वो एक उदाहरण भी दिया जाता है ना, तीन मजदूर जो एक पत्थर, तीनों पत्थर तोड़ रहे हैं, लेकिन तीनों के मन में जो विचार है वो क्या है? पत्थर तोड़ने वाला हमेशा पत्थर ही तोड़ता रहेगा, जीवन यापन करने के लिए बस जीवन यापन, अपना हम सेवा इसलिए कर रहे हैं ताकि मधुबन में रह रहे, ये भी नहीं। हम सेवा किस लिए कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं? बाबा ने हमें ये जिम्मेवारी, ये ड्यूटी, ये सेवा दी है, ड्यूटी नहीं, ये सेवा दी है, और वो सेवा हमें उमंग दिलाने वाली, आगे बढ़ाने वाली बन जाएगी। हमारा जीवन ही सेवा के लिए। तो और कर्म द्वारा सेवा भी कर सकते हैं, कर्म में ये सभी चीज़ें आ गई। तो और सेवा कैसे की जा सकती है, कुछ पॉइंट। बोल के द्वारा हम किसी को बोल, जो बोल रहे हैं वो दिल दुखाने वाले नहीं हो। वैसे बोल, दिल में एक होता है बोल दिल में लग जाता है, और एक बोल दिल में छप जाता है। हम छपाने वाला काम करें, दिल में लगने वाला काम ना करें, ऐसा बोल ना बोला जाए। दिल खुश, बाबा बोलते हैं ना, एक दूसरे को दिल खुश मिठाई बांटो, और दिल खुश मिठाई बांटते हैं तो दूसरों में भी जैसा दिया जाता है वैसा मिल जाता है हमें। तो हमें ये सोच के हर एक सेवा जो भी दी जा रही है वो रूहानी सेवा के निमित्त है। अच्छा, ओम शांति।